ओम शांति। तो आज क्या तारीख है? 8 मार्च। कौन सा डे है आज? थर्सडे। तो आज वुमेन्स डे है, तो वुमेन्स डे पर कुछ चर्चा करने के लिए कहा था। आज वुमेन्स डे 8 मार्च 2018 का थीम है प्रेस फॉर प्रोग्रेस, तो उस पर कुछ चर्चा करेंगे। कहीं हमने पढ़ा था कि एक महिला होना बहुत कठिन है, एक सक्सेसफुल महिला होना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उसको एक पुरुष की तरह सोचना पड़ता है, एक स्त्री की तरह कर्म करने पड़ते हैं, और लगना पड़ता है एक यंग गर्ल की तरह, और काम करना पड़ता है घोड़े की तरह। तो ये सक्सेसफुल मंत्रा, अगर किसी महिला को बहुत सक्सेस होना है लाइफ में तो ये उसका मंत्रा है। तो आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और ग्लोबली हर जगह पर इसका सेलिब्रेशन होगा। और हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे कोई ना कोई थीम होता है, तो आज का थीम है प्रेस फॉर प्रोग्रेस। इसकी हम चर्चा करेंगे आगे। इससे पहले थोड़ा बहुत महिलाओं के बारे में कि दुनिया में बहुत सारी महिलाएं होती है, और उनका हर एक का कोई ना कोई रोल होता है। कभी वो एक माँ के रूप में प्ले कर रही है, कभी एक बहन के रूप में, कभी एक डॉटर के रूप में, बेटी के रूप में, पति पत्नी के रूप में। लेकिन हमेशा उसकी एक चाहना होती है कि उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, मतलब अंदर से मैं भी कुछ हूं, मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो किसी और पर निर्भर नहीं करता, लेकिन मैं खुद भी कुछ हूं। और देखा जाएगा तो लास्ट 2000 ईयर्स में देवियों की पूजा होती है ना शक्तियों के रूप में, लेकिन वो मंदिरों तक ही रह जाती है। घरों में महिलाओं को उतना दर्जा नहीं दिया जाता, जबकि भारत में तो स्पेशल पूजा होती है, फिर भी घरों में नहीं दिया जाता। लेकिन देखा जाए तो स्त्री ही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, क्योंकि वही अपना महत्व भूल चुकी है, वही अपने स्पिरिचुअल पावर्स को भूल चुकी है। और कहीं ना कहीं ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो मोटो है कि पुरुष और स्त्री को समान भाव से देखा जाए, उनके जो राइट्स है, राइट्स इक्वली उनको दिया जाए, इसीलिए ये डे सेलिब्रेट होता है। और ऐसी कई आज भी प्लेसेस है जहां पर अगर कोई जॉब के लिए बोले या कोई कोई पोजीशन के लिए, तो महिलाओं को उसके लिए नहीं दिया जाता वो पोजीशन, क्योंकि वो स्त्री है इसलिए वो एलिजिबल नहीं है उसके लिए। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो लीडरशिप क्वालिटीज में अगर स्नेह, लव, कंपैशन, सहानुभूति, टॉलरेंस, पावर, ह्यूमिलिटी, ये सारी चीजें महिलाओं में नेचुरली है, भले आत्मा में है, लेकिन पुरुष और स्त्री को अगर देखा जाए तो महिलाओं में ये आसानी से है ये क्वालिटीज, फिर भी लोग उनको उस नजर से नहीं देखते। और देखा गया है कि सेवा में महिलाएं हमेशा दूसरों को आगे रखती है, लेकिन कभी कभार इसको एक कमजोरी की निशानी कहते हैं कि ये उन दूसरों को आगे रखती है, खुद पीछे रहती है। लेकिन इसका ऑपोजिट है कि जो दूसरों को अपने आगे रखते वो एक महानता की निशानी होती है, और वो महिलाओं में होती है। और हमेशा देखा गया है कि वो हमेशा अपने आप को निग्लेक्ट करती है, महिलाएं जो होती है ना वो अपने आप को हमेशा निग्लेक्ट करती है, और इसी के कारण वो अपने इतनी कमजोर बनती जा रही है। तो और जैसे कि जो डोमिनेट करने की भावना होती है, किसी को सप्रेस करने की भावना होती है, तो ये क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझते, सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होते, तो ये सारी भावनाएं खत्म हो जाती है। तो जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा तन के द्वारा उन्होंने महिलाओं को ही आगे रखा, इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है ब्रह्मा कुमारीज। और देखा जाए तो हमारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशन के हेड्स हैं वो सारी महिलाएं हैं, हमारी जो दादियां। और जब हम 8 साल पहले BSCS मुंबई में काम करते थे, तो वहां पर भी बाहर के लोग बोलते थे कि देखो ये हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारीज का, इधर कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ सारी महिलाएं चला रही है सारे डिपार्टमेंट्स को, तो सारी तरफ वो गवर्न कर रही है। तो बहुत गर्व फील होता था तभी भी। तो कुछ हिस्ट्री इस दिन के बारे में कि ये ग्लोबली सेलिब्रेट होता है वुमेन्स डे, और क्योंकि क्योंकि इतनी भिन्नता आ गई थी स्त्री पुरुष में, और ये समानता के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि इनको इक्वल राइट्स दिया जाए। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सबसे पहले कैसे ये चालू हुआ, 1908 में बहुत भेदभाव हो रहा था और डिमांड्स बढ़ रही थी कि इनको जॉब सिक्योरिटी दिया जाए, इनकी भी पे उतनी दी जाए जितनी पुरुष को दी जाती है। तो 1909 में नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट हुआ फरवरी 28 को यूनाइटेड स्टेट्स में। 1910 में इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस था, तो उधर ये आइडिया आई, एक महिला जो थी उनका नाम था क्लेरा जेटकिन, तो ये कोपेनहेगन प्लेस में हुआ था, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये वहां से आइडिया आई थी, और 1911 में फर्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट हुआ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड में। 1913 to 1914 लास्ट संडे ऑफ फरवरी ये सेलिब्रेट होता था, फिर ग्रेजुअली इसकी डेट जो डिसाइड हुई वो थी 8 मार्च, एंड 8 मार्च आज जगह जगह पे वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और हर वुमेन्स डे पे कुछ ना कुछ थीम ली जाती है। तो जैसे कि पहले की कोई कोई थीम्स ऐसी थी, सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, वुमेन एट द पीस टेबल, वुमेन एंड ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड फ्री ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अ प्रोमिस इज अ प्रोमिस, ऐसे अलग अलग थीम्स ली जाती है जिसमें जिसमें महिलाओं का उद्धार हो और वो आगे बढ़े, उनकी उन्नति हो। इंटरनेशनल वुमेन्स डे का एक कलर भी है, क्या कलर होगा? पिंक, पर्पल, पर्पल। तो पहले ना इन लोगों ने डिसाइड किया था पर्पल, ग्रीन, व्हाइट, तो ग्रीन सिग्निफाइज होप, उम्मीद, और पर्पल, व्हाइट सिग्निफाइज प्योरिटी, बट प्योरिटी कॉन्ट्रोवर्शियल था तो उन्होंने वो हटा दिया। तो पर्पल जो कलर है वो लिया जाता है बिकॉज वो सिग्निफाई करता है डिग्निटी एंड जस्टिस के लिए। अच्छा, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो कलर है पर्पल है, तो आई थिंक ये लोग पर्पल कलर पहन के ये सब कैंपेन्स करेंगे। तो जो आज का थीम है, अब हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस करें, क्योंकि हम इसको स्पिरिचुअल वे में लेंगे। तो थीम जो है प्रेस फॉर प्रोग्रेस, तो उन्होंने वेबसाइट पर 5 पॉइंट्स दिए हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं, इस पे आपको काम करना है, प्रेस मतलब बटन प्रेस करो कि इस थीम पर मैं पूरा साल काम करूंगी अपने उद्धार के लिए या जो महिलाएं हैं उनके उद्धार के लिए। तो उन्होंने 5 ऐसे पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन हम उस पॉइंट्स को स्पिरिचुअल वे में लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट उनका है मेंटेन जेंडर पैरिटी माइंडसेट। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर स्त्री कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो आई विल क्वेश्चन कि क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही है। इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद आई विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं आगे बढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, तो मैं पूरा साल इस चीज पर काम करूंगी। तो अब इसको स्पिरिचुअल वे में हम ले तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसी ब्राह्मण जीवन में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो हमको छोड़नी नहीं है। अगर मैंने इस बटन को प्रेस किया फॉर माई प्रोग्रेस तो मैं क्या क्या करूंगी। तो हमने कुछ इस पे सोचा कि सेवा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है हमको कई बार, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते और हम सोचते कोई और कर ले, बहुत सारे लोग तो है वो क्यों नहीं कर ले, हम तो बिजी है। जैसे हमको ये टॉपिक दिया गया कल, तो हम सोचे अरे एक दिन पहले दे रहे, थोड़े पहले देना चाहिए था ये टॉपिक, तो हम छोड़ देते हैं ना, बहुत इजीली छोड़ देते हैं टॉपिक को। तो उस तरह से ग्रैब द अपॉर्चुनिटी सेवा में, और ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको भाषण करने की सेवा मिलेगी, कभी कुछ और सेवा मिलेगी, कभी जैसे अगर कोई फंक्शन है तो आपको मधुबन को डेकोरेट करने की सेवा मिलेगी, तो उस स्वमान में हम स्थित होकर उस डेकोरेशन की सेवा में भी पार्टिसिपेट करें। और जैसे कि कॉन्फ्रेंसेज होते हैं है ना, मधुबन में, ग्रांड सरोवर, शांतिवन में कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, तो उसमें भी हैंड्स चाहिए होते हैं। तो जैसे कि आपको बुलाया गया कि सेवाधारी के रूप में आओ, तो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम सेवा के फील्ड में उतरते हैं, क्यों हमने पॉइंट ली सेवा की, क्योंकि जब हम सेवा के फील्ड में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की टक्कर होती है और तब हमको पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, कि हम जो इतना ज्ञान योग कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट है ना। जब तक हम अपने रूम में बैठ के आराम से मुरली पढ़ेंगे, घोट घोट के क्लास करवाएंगे, लिखेंगे 5 पेज 6 पेज लिख देंगे, अव्यक्त मुरली रोज पढ़ेंगे, ये क्लास आके रोज अटेंड करेंगे, लेकिन पता कब चलेगा कि हमारी स्टेज क्या है, जब हम सेवा में उतरेंगे। तो इसीलिए जब सेवा की कोई चांस मिले तो उसको छोड़ना नहीं है। सेकेंड हमने सोचा कि हॉलीडेज, अभी मधुबन में तो कोई हॉलीडे नहीं होती है, कई लोग बोलते हैं कि हाँ भाई हॉस्पिटल वालों को हॉलीडे होता है संडे, हमको नहीं होता है, लेकिन कई ऐसे समय होता है, कई ऐसे दिन होते हैं जब हमारी सेवा थोड़ी कम होती है उस दिन, तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी उसमें कि उस समय मुझे क्या करना है, उस समय को कैसे इम्प्रूव करना है, कि उस समय में मैं क्या करूंगी। तो जैसे बाबा ने लास्ट संडे कहा ना कि अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ, तो उस हॉलिडे के दिन मुझे अपना समय कैसे बिताना है उस पे सोचना है, कि टाइम टेबल की एक्स्ट्रा योग करना है या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने सोचा कि जब हमारे लाइफ में पेपर्स आते हैं, है ना, कोई सिचुएशन आती है, कोई पेपर्स आते हैं, तो हमको डर लगता है और हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्यों आ रही है ये परिस्थितियां, ये पेपर्स, लेकिन उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी सोचो कि मुझे कुछ सीखने मिलने वाला है ये पेपर से, कि ये जो पेपर आया है ये मुझे सिखाने आया है और मुझे आगे बढ़ाने आया है, ना कि मैं पश्चाताप करूं, ना कि मैं रोऊं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो इसीलिए रेदर देन कि हम एक भिखारी बन जाए या रोने लगे या दूसरों से मांगने लगे कि मुझे थोड़ा प्यार दे दो, मुझे थोड़ा सपोर्ट दे दो, हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और हम उससे लर्न करें कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। और जैसे कि कई आत्माएं हमारे सामने, जैसे हम अगर किसी गुण पे पढ़ रहे हैं, जैसे हम सहन शक्ति के बारे में पढ़ते हैं या हम उसके ऊपर क्लास देते हैं, अब सहन शक्ति में मेरा स्वरूप कब बनेगी, जब कोई आत्मा आके मेरे से वो पेपर लेगी और वो मुझे पार्ट पढ़ा के जाएगी। तो जब ऐसा कोई पेपर आए तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी के सीख लो कि ये आत्मा को थैंक यू करो कि ये सहन शक्ति का पार्ट पढ़ा के जा रही है मुझे। फिर एक और है कि बिकम एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, कि हमारे पास जैसे कि कभी कभार हम बहुत बिजी होते हैं, लेकिन हम वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें कि इतना बिजी होते हुए भी इनकी स्थिति देखो कितनी अच्छी है, इतना बिजी होते हुए भी इतना अच्छा पुरुषार्थ कैसे कर रहे हैं। तो स्थिति को अचोल अडोल रखना, जैसे बाबा ने कहा ना कि हनुमान मिसल आपकी स्थिति अचल अडोल रहे, तो ये सारी पॉइंट्स, तो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना। तो फर्स्ट पॉइंट था मेंटेन जेंडर पैरिटी माइंडसेट, उसमें ग्रैब अपॉर्चुनिटीज कि कैसे, तो उसमें सेवा की एक पॉइंट, उसमें अगर कोई छुट्टी है तो उसमें हमको क्या करना है, और अगर कोई पेपर्स आ रहे लाइफ में तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए, और दूसरा एक एग्जाम्पल बनना, इतना बिजी होते हुए भी लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उसमें भी अपना टाइम को सफल करना। सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया है चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। अब चैलेंज स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िवादिता, परंपरा से कोई चीजें चली आ रही है, लोगों की मान्यता है कि ये बस ऐसे है, तो उसमें चैलेंज करना। तो उसमें उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि ऐसे कौन से बैरियर्स है जो महिला की प्रोग्रेस को रोक देते, व्हाट आर द बैरियर्स टू प्रोग्रेस ऑफ वुमेन। तो अब ये पॉइंट को गड़दारती रहती है, तो ऐसे कौन से बैरियर्स है कि मुझे वो अपने, अभी हम इसको स्पिरिचुअल पॉइंट में लेंगे कि ऐसे कौन से बैरियर्स है मेरे पुरुषार्थ में जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो कौन से बैरियर्स हो सकते हैं, आप क्या सोचेंगे? अपने में हीन भावना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और प्रोक्रेस्टिनेशन, बार बार एक ही चीज पर सोचते रहना, और मन का बंधन, बॉन्डेजेस, किसी पर आधारित रहना, डिपेंडेंसी, पुरुषों से समानता करना ये समाज के खिलाफ है ऐसे सोचते, और अगर हम स्त्री पुरुष दोनों को लेके चले तो हमारे पुरुषार्थ में क्या क्या बैरियर्स है, ऐसे सोच सकते ये पॉइंट पे। तो हमने कुछ इसमें से आइडेंटिफाई किए कि कौन सी ऐसी मान्यता है, कौन सा ऐसा हमारे जीवन में कोई चीज है या कोई बॉन्डेज है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ऐसा कौन सा एक व्यर्थ का कीड़ा मेरे दिमाग में घुस गया है कि आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा वो मुझे, तो वो कौन सा हो सकता है। तो कभी कभार कुछ इनसिक्योरिटी फीलिंग्स होती है कि ये इनसिक्योर फील करते हैं कि ये किसी भी बात को लेके जिससे मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो वो कौन सी इनसिक्योरिटी की फीलिंग है उसको फाइंड करना। या तो किसी किसी में भय होता है, किसी चीज के बारे में फियर्स होते हैं कि ये होगा तो ये होगा, अच्छा बाबा ने ये कहा मुरली में, अब उसको डर कर है ना करेंगे। तो जैसे अभी भगवान तो आके हमसे रिलेशनशिप बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, प्यार का संबंध, लेकिन फिर भी हम उसको वो भगवान वाले स्टेटस पर देखे और बोले कि ये भगवान, मैं उसका ये भक्त, और डर के पुरुषार्थ करे, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि लास्ट वीक मुरली में एक पॉइंट बहुत फ्रिक्वेंटली आया कि फेमिलियरिटी का हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए, है ना। अब अगर इस पॉइंट को हम देखें और इस पर चिंतन करें, तो फेमिलियरिटी का हल्का नशा, आप कोई सोचे कि किसी भाई या किसी बहन से तो बात ही नहीं करनी है नहीं तो फेमिलियरिटी आ जाएगी, तो अगर हम ये सोचने लगे तो हम भाई बहने मिलके सेवा कैसे करेंगे। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा उस पॉइंट को बोल रहा है वो हमें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना हम तो किसी से भी बात नहीं करेंगे और फिर बस अपने रूम में ही रहेंगे। तो फेमिलियरिटी का हल्का नशा का मतलब ये नहीं कि किसी से बात ही नहीं करनी है, किसी के कॉन्टेक्ट में ही नहीं आना है। तो उस पॉइंट को कैसे उठाए, जैसे बाबा कभी मुरली में कहते हैं संगम युग मौजों का युग है। अब इस पॉइंट को, संगम युग मौजों का युग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कुछ टाइम है तो उसको मौज मस्ती में उड़ाए, और बस अगर कुछ टाइम मिल रहा है या कोई फेस्टिवल है तो उसको स्पिरिचुअल वे में सेलिब्रेट करें, तो वैसा होना चाहिए ना। तो उसको भी समझना है कि वो पॉइंट क्यों, जैसे एक पॉइंट आता है मुरली में सफेद कपड़े पहनने, कभी बाबा बोलता है कलर कपड़े पहनने, उस पर भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है लोगों को लेके कि क्या करें, है ना। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा बोल रहे हैं उस चीज को, अगर आपके कलर कपड़े से सेवा होती है तो पहनो ना, तो ये सब चीजें सोचनी है। जैसे बाबा इकोनॉमी के बारे में बोलता है कि बच्चे तुमको इकोनॉमी करनी है, यज्ञ की, यज्ञ सेवा करते हो आप लोग उसमें इकोनॉमी करनी है, हर चीज का ध्यान देना है। अब इस पॉइंट को कोई ले ले और है ना एकदम मर मर के उस पर काम करे और अपने आप को ही डिप्रेशन में लेके आए, तो वो भी नहीं चलेगा। जैसे कि अगर किसी को स्कूटर खरीदनी है, फॉर एग्जांपल, वो स्कूटर खरीदने से उसका पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको किसी के लिए रुकना नहीं पड़ता, है ना, तो उसका पुरुषार्थ बढ़ जाता है, तो उस पर स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से हर पॉइंट को समझना, कि नहीं तो वो जो अंदर हमारे बैठ जाती है ना चीजें कि ये मतलब ऐसे, इसका मतलब ऐसे, तो वैसे नहीं सोचना है। फिर अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करना कि मेरे में ऐसी कौन सी कमजोरी है कि ये चीज नहीं हो रही है। जैसे कि अगर किसी का अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, तो उसके बारे में काम करना, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा मतलब उसको छोड़ देना, लेकिन उसके बारे में काम करना, अमृत वेला की बुक है उसको पढ़ना, या जिनका अमृत वेला अच्छा होता है उनके पास जाके उनसे पूछना कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। सबने कोई ना कोई पुरुषार्थ किया अपने अमृत वेला को पावरफुल बनाने, तो उनसे बात करना, तो इन सब चीजों पर काम करना। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है, चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप्स, तो मतलब इसमें कौन से बैरियर्स है, जैसे कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी स्थिति बार बार गिर जाती है, तो क्यों गिर जाती है। जैसे अगर अभी यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है, तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि रोना आता है, स्त्रियों को रोना जल्दी आता है, तो क्यों आता है रोना, क्यों ऐसा होता है कि इतना ज्ञान योग करने के बाद भी, हाँ इतना पढ़ने के बाद भी वो ज्ञान हमारा स्वरूप क्यों नहीं बन रहा, क्यों रोना आ जाता है, क्यों स्थिति गिर जाती है, क्यों फिर दूसरों के पास जाते हैं, तो ऐसे अस्त्र टंकी भरपूर रहती है। तो बाबा ने कहा ना कि योग की अग्नि से अपनी आंसुओं की टंकी को धूप से सुखा दो। तो बाबा कितने सारे पॉइंट्स मुरली में कहता है कि अगर जो रोएंगे तो वह दास बनेंगे, और बाबा कहता है ईश्वरीय बच्चे होकर तुमको ये शोभता नहीं, अगर आप नहीं खुश रहेंगे तो और कौन खुश रहेगा। रोज मुरली में ये पॉइंट सुनते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो आज के दिन जैसे ये प्रेस द बटन है ना, तो अपनी कमजोरी को आइडेंटिफाई करना कि शायद ये चीज मेरे में है जिसकी वजह से मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो उस बटन को प्रेस करके उस पर काम करना है। तो ये एक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया है फॉर्ज पॉजिटिव वाइबिलिटी ऑफ वुमेन। तो इसमें कि महिलाओं की प्रत्यक्षता कैसी हो, महिला बस सब जगह पर महिलाएं कैसे आगे बढ़े, कैसे दिखे कि ये भी है, उनको लीडर्स बनाया जाए या उनको स्पोक्स पर्सन बनाया जाए, तो महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी प्रत्यक्षता कैसे हो। तो जैसे हमने इस पॉइंट को लिया कि हम बाबा की प्रत्यक्षता कैसे करें, तो जैसे हम अपने फील्ड में काम करते हैं तो निमित भाव से बार बार हम अपने आप को याद दिलाए कि मैं निमित हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, है ना, और बाबा मुझसे काम करा रहे हैं। तो जब मैं इस स्वमान में स्थित होकर सेवा करूंगी तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। सेकंड पॉइंट हमने इसमें लिया चेहरे और चलन से सेवा। अब इस चेहरे और चलन से सेवा का मतलब ये नहीं कि मैं बस आऊं, अमृत वेला किया, मुरली क्लास की, शाम को योग किया, लोग मुझे देख रहे, अरे वाह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, ये चेहरे और चलन से सेवा नहीं है। चेहरे और चलन से सेवा जब हम अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं, हमारे लौकिक परिवार, हमारे अलौकिक परिवार, हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, उनसे जाके पूछो ये कैसे है तो पता चलेगा। वो हम अपने कलीग्स के साथ कैसे रहते हैं, क्या हम उनके साथ गुस्सा करते हैं बार बार, या उस पर डोमिनेट करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं क्योंकि हमारी पोजीशन थोड़ी हाई है उनसे, तब पता चलेगा कि आप चेहरे और चलन से कैसे सेवा कर रहे हो। तो ये कर सकते हैं। तीसरा हमने सोचा कि जिधर हम सेवा कर रहे हैं, जिधर हम जिस डिपार्टमेंट में या कहीं बाहर लॉकिंग में जॉब करते हैं, तो बाबा की प्रत्यक्षता कैसे हो, तो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज रख सकते हैं उनके लिए, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रख सकते हैं, कोई वर्कशॉप्स रख सकते हैं, जिससे हम बाबा के नजदीक लेके आए उनको, जिससे हम बाबा के ज्ञान में उनको लेके आए, तो ये कर सकते हैं। तो फॉर्ज पॉजिटिव विजिबिलिटी, तो बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करें उसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, इन्फ्लुएंस अदर्स बिलीव्स एक्शन। इसमें यहाँ पे आप एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे, उन्होंने दिया है कि आप एक एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे दुनिया के लिए, क्या ऐसे एक्शंस लेंगे आप कि आप एग्जाम्पल सेट करेंगे। या तो उन्होंने कहा है कि एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू चेंजेस द स्टेटस क्यो, जो प्रेजेंट स्टेट है महिलाओं की उसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे। तो अभी इसको स्पिरिचुअल वे में हमने लिया कि हम एक एग्जाम्पल कैसे बने इस फॉर द चेंज, एग्जाम्पल कैसे बने, हम क्या सोच सकते हैं इस पॉइंट में, क्या ऐसे करेंगे कि हम एक एग्जाम्पल सेट करें लोगों के सामने। ऐसा कुछ आज हमको करना है आज के दिन कि हम एक एग्जाम्पल सेट करें लोगों के लिए, तो क्या कर सकते हैं। हाँ वही अलग क्या करना है, सबसे अलग जो कुछ करना है वो क्या करना है जो किसी ने किया नहीं। पीछे से कोई बोल रहा था सहयोग देना, यूज योर स्पेशलिटीज, और झांसी की रानी, और ऐसा क्या करें, सर्विंग द सोसाइटी। अपने लेवल पर सोचो, देखो प्रेस द बटन जो है ना, प्रेस द फॉर प्रोग्रेस, हर चीज अपने लेवल पे सोचो कि मैं क्या करूंगी फॉर द चेंज, मतलब मैं अपने में क्या चेंज लाऊंगी कि, है ना, आई सेट एन एग्जाम्पल। तो हम गरीबों की सेवा कर सकते हैं, सहयोग देना, और हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या करेंगे। ओके हाँ, देखो जिसी का अगर किसी से मन मुटाव है, किसी से बातचीत नहीं चल रही है, तो उसको जाके बात करे। उसका अनब्लॉक कर दो। और क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। तो तो सबसे पहले पॉइंट हमने इसमें ली अंतर्मुखता, जैसे ये फीमेल्स के लिए लिया कि जैसे हमेशा बोलते हैं स्त्री ज्यादा, स्त्री जहां पे दो तीन मिल गई तो बहुत बातें करेंगी, है ना, बहुत आराम, गॉसिप्स भी बहुत आराम से होगी, तो इसीलिए मौन में रहने का, मौन में रहना, तो जितना हो सके मौन में रहे तो उससे पुरुषार्थ भी आगे बढ़ जाता है। जैसे उस दिन बात हो रही थी यहाँ पे कि हम मुख से तो मौन रखते हैं लेकिन हम व्हाट्सएप से लोगों को इतने सारे मैसेजेस करते बैठते हैं, अगर कुछ हो गई प्रॉब्लम तो एक के बाद एक के बाद एक, इसीलिए फिर ब्लॉक लिस्ट में जाते हैं वो लोग। तो व्हाट्सएप से भी है ना मौन, तो जैसे उस दिन बात हो रही थी तो किसी ने बताया कि हमारा जो ग्रुप है ना उसमें हम व्हाट्सएप को सिर्फ सुबह 8 से 9 चेक करते हैं और रात में 8 से 9 चेक करते हैं, तो किसी ने कहा 2 घंटा भी बहुत ज्यादा है 8 से 9 8 से 9, तो एक भाई ने कहा कि है ना हर घंटे में 1 मिनट चेक करना है बस, उसके बाद उसको बाजू में रखना है, तो पूरे दिन में 12-15 मिनट होगा। तो अभी लोगों में एक जागृति आ गई है कि व्हाट्सएप को कितना यूज करना चाहिए कितना नहीं यूज करना चाहिए। तो मौन में रहना, जैसे उस दिन बात हो रही थी पावर ऑफ लिसनिंग आर्ट ऑफ लिसनिंग, तो हाँ कहाँ बोलना है जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना है, उससे ज्यादा नहीं। सेकंड पॉइंट हमने इसमें लिया फॉर द चेंज कंट्रोल्ड इमोशंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, कि हमारी स्टेज जो हो ना वो बहुत बहुत स्टेबल हो, हम किसी के बोलने से हम प्रभावित ना हो, है ना, कि अगर किसी ने निंदा कर ली तो हम डाउन हो जाए, या किसी ने हमारी तारीफ कर ली तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो ना ही ज्यादा एक्साइटमेंट में आना है और ना ही लो लेवल पे जाना है। तो हमें एक अपने आप से वादा करना पड़ेगा आज कि मैं खुश रहूंगी नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हमेशा खुश रहना है, मुझे सदा खुश रहना है। तो जैसे कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, है ना, इतने लेवल पर बाबा हमको बताता है कि किसी की मृत्यु भी हो जाएगी तो तुमको खुश रहना है, फिर तो जीवन की ये जो छोटी छोटी परिस्थिति आ रही है हमारे सामने तो उसमें हम इतने डाउन की हो जाते हैं। तो जैसे कि क्या कहते हैं ना कि थिक स्किन, जाड़ी चमड़ी बन जाओ, कि कुछ भी हो हमको वो इफेक्ट ना करे, है ना, जैसे क्लास ली थी ना चिकना घड़ा बन जाओ, कि कोई भी बात हमारे चित्त पर रुके ही नहीं, क्योंकि अगर कोई बात हमारे चित्त पर आई तो फिर वो हमारा हिस्सा बनती जाती है, तो कोई भी बात को अंदर ना आने दे, तो ये काम कर सकते हैं, तो कंट्रोल्ड इमोशंस। और थर्ड पॉइंट हमने इसमें लिया स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आजकल हम लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लेकिन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आनी चाहिए हमें, कि हम अपने डिसीजंस खुद ले, है ना, अभी आजकल हम लोगों की क्लासेस बहुत सुनते हैं, इसकी क्लास उसकी क्लास, लेकिन कहते हैं कि सुनो सबकी और करो अपनी, है ना, अपने डिसीजंस खुद लो कि क्या करना है मुझे, ऐसे नहीं कि किसी से इन्फ्लुएंस होके करे, दैट इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं बट इसमें से हमने थोड़े उठाए कि हमें ये मार्ग इतना आसान नहीं है, इस पे बहुत फूक फूक के चलना है, तो कैसे चलना है वो आना चाहिए, परिवार के साथ कैसे रहना है, संबंधों को कैसे निभाते हुए चलना है, और ना ही किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी है, दैट इज मैच्योरिटी। अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रख के चल रहे तो हमको ही दुख मिलता है, ये हम सबको पता है कि अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, हम कोई अच्छी सेवा कर रहे हैं तो हमको शाबाशी नहीं मिलने वाली, डोंट एक्सपेक्ट कि मिलेगी, ये कलयुग है, सबको अपनी पड़ी है यहाँ पर। और जैसे है ना सूरज भाई कहते हैं ना कि आप उनके पास जा रहे हो जिनके मटके सूखे हुए हैं, घड़े ही सूखे हुए, उनके पास जा रहे हो पानी मांगने के लिए, यहाँ पे सब लोग सूखे पड़े हैं, तो उनके पास भिखारी बन के नहीं जाना है कि प्लीज मुझे अप्रिशिएट करो, भिखारी मुझे अप्रिशिएट करो या मेरी केयर करो, तो इन पर ध्यान देना है, तो दैट इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो इस पे 3 पॉइंट्स लिए थे हमने, और भी जैसे आप लोगों ने बोले, अंतर्मुखता, एक इमोशनल स्टेबिलिटी और एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इन्होंने लिया है सेलिब्रेट वुमेन्स अचीवमेंट, बिलीव अचीवमेंट कम्स इन मेनी फॉर्म्स, उन्होंने दिया था कि अचीवमेंट अलग अलग रूप में हमारे पास आएंगी, तो हमारे जीवन में, हमारे ब्राह्मण जीवन में अचीवमेंट्स कैसे आती है, कैसे कैसे आ सकती है सफलता, कैसे पता चलेगा कि मैं बराबर चल रही हूं, योग अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, है ना, समय पर सहयोग प्राप्त होगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, है ना, सबका रिस्पेक्ट मिलेगा मन में, मत क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, तो अचीवमेंट्स अलग अलग रूप में आएंगे। ऐसे अचीवमेंट्स का मतलब ये नहीं कि आज अवार्ड मिलेगा कि ब्रह्मा कुमारी ऑफ द ईयर, ऐसे कोई अवार्ड देने नहीं आएगा हमको। अचीवमेंट्स ये छोटी छोटी चीजों में आएगा, जैसे आपका अमृत वेला शक्तिशाली होगा, बीज रूप स्थिति का अभ्यास होगा उसमें, है ना, सदा खुश रहेंगे और जैसे कहा सदा संतुष्ट रहेंगे, सहयोग मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सेवा की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने आज वेबसाइट पे डाले हैं। 5 पॉइंट्स है, उसको हमने स्पिरिचुअल वे में देखा। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें था मेंटेन जेंडर पैरिटी माइंडसेट। तो इसमें हमने सोचा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो हम अपने जीवन में ग्रैब करें। सेकंड था चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड बायस, कि जो परंपरा से चली आ रही चीजें हैं तो उसको कैसे बदले, है ना, तो कौन से बैरियर्स है मेरे लाइफ में जो मुझे निकालने हैं। और थर्ड पॉइंट था फॉर्ज पॉजिटिव विजिबिलिटी ऑफ वुमेन, तो इसमें कि कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करें, कैसे हम जैसे उन्होंने तो महिलाओं के लिए दिया तो हम अपने लिए ले ये पॉइंट को। और नेक्स्ट पॉइंट था इन्फ्लुएंस अदर्स बिलीव्स एक्शंस, कि हम एक एग्जांपल कैसे सेट करें समाज के लिए। और लास्ट पॉइंट था सेलिब्रेट वुमेन्स अचीवमेंट्स, कि अचीवमेंट्स जो है हमारे जीवन में अलग अलग रूप में आती है। तो वैसे तो दुनिया में कई लोग आज ये दिन को सेलिब्रेट करेंगे और कई कई महिलाओं के बारे में चर्चा होगी, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में, 5 सक्सेसफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया, 10 सक्सेसफुल वुमेन। तो हमारे हमारे ब्राह्मण जीवन में हमारे मम्मा है, दादियां है, ये सब हमारी सक्सेसफुल वुमेन्स है हमारी ब्राह्मण फैमिली की। जैसे मम्मा तो सबसे टॉप वुमेन ऑफ एंटायर कल्पा है, तो हम इनकी जीवन कहानी को पढ़े, जो हमारे पूर्वज है ना, हमारी जो दादियां है, तो इनके जीवन कहानी के बारे में पढ़ के उनको हम धारण करें। तो आज के दिन में ये जो पॉइंट्स चर्चा की, तो प्रेस फॉर प्रोग्रेस, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे आई विल प्रेस द बटन कि ये चीज मुझे अपने जीवन में परिवर्तन करनी है जिससे मेरा प्रोग्रेस होगा, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। ये महिला सम्मान में कविता है, थोड़ी छोटी सी। कभी खुद से भी खुद को देख ले ए नारी, कभी खुद से भी खुद को देख ले ए नारी, तेरे होने से ही चलती है दुनिया सारी, तेरे होने से ही दुनिया चलती है सारी। कभी खुद से भी खुद को पहचान ले ए नारी, नारी है तो उजाला है, वरना अंधियारी सी है ये दुनिया सारी। नारी है तो उजाला है, वरना अंधियारी सी है ये दुनिया सारी। नारी डरती रही तो वो डराते रहे, नारी झुकती रही तो वो झुकाते रहे, नारी सहती रही तो वो लोग जुल्म डाते रहे। नारी सत्य है, यूं असत्य ना बन, नारी जीवित है, नारी मिट्टी ना बन। लोग गिराएंगे, लोग तुझे डराएंगे, पर तू डरना मत, गिरना मत, आगे बढ़, हिम्मत दिखा। ऐसी वीरांगना बन जो मरकर आज भी जीवित हैं, ऐसी वीरांगना बन, नारी बन, ऐसी रानी लक्ष्मीबाई बन, रानी चेन्नम्मा जैसी बन, रानी पद्मिनी जैसी बन। जा वीरांगना झलकारी, तू अब ना रहना चुप, अब ना है चुप रहने की बारी, तू अब लड़ना उनसे जिन्होंने तेरी लाज उघारी, तू बन जवाब उनका जिन्होंने उठाया था तुझ पर सवाल, तू उठ खड़ी हो और बता इन्हें, तू तो है दुनिया, तू है तो ये दुनिया सारी, नारी है तो है दुनिया सारी। ओम शांति।